प्रगतिवादी काव्य कला का विकास छायावादी काव्य कला के प्रतिवाद के फलस्वरूप सन 1936 से सन 1947 के मध्य काल में प्रगतिशील साहित्य का व्यापक विकास हुआ। प्रगतिशील साहित्य का विकास यूरोप के उस समय हुआ जब समाज में विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल मार्क्स का महत्वपूर्ण सिद्धांत द्वंद्वात्मक वस्तुवाद अपने चरम प्रगति पर रहा। जर्मन के प्रसिद्ध दार्शनिक अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया कि संपूर्ण सृष्टि के विकास का मूल कारण पदार्थों के भीतर अंतर्निहित शक्तियों का आपसी द्वंद्व है। मार्क्स ने समूचे विश्व को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया है, पहला शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। आज के औद्योगिक समाज में मिल मालिक या पूंजीपति श्रमिक आज औद्योगिक विकास में मालिक या पूंजीपति श्रमिक अथवा मजदूर के श्रम के अनुपात में प्राप्त उचित मूल्य उसे नहीं देता, वह उस बचे हुए अतिरिक्त मूल्य को स्वयं हड़प लेता है। इसका परिणाम यह होता है कि एक वर्ग दिनों दिन धनी होता जाता है तो दूसरा वर्ग निर्धन और सर्वहारा बन जाता है। प्रगतिशील साहित्य के सृजनकर्ता इसी निर्धन या सर्वहारा वर्ग के यथार्थ जीवन का चरित्र चित्रण बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करता है। ऐसे समय में प्रगतिवादी कवियों का दायित्व है कि वे प्रगति के लिए संघर्षरत शक्तियों छटपटाती चेतना तथा उसके पक्षधर समाज का समर्थन करें और शोषक वर्ग के हितों एवं भावनाओं का विरोध। इसी दृष्टि को प्रगतिवादी साहित्यकारों ने प्रगतिशील समाजवादी साहित्य का पर्याय कहा है। प्रगतिशील साहित्य के विकास हेतु प्रेमचंद, रविंद्रनाथ ठाकुर, डॉक्टर मूलकराज आनंद, इला जोशी, मलिहावादी जैसे अग्रणी लेखकों ने इस आंदोलन का न केवल स्वागत किया अपितु उसकी वृद्धि में अपना विशेष योगदान किया, जिस प्रतिफल यह हुआ कि अनेक उत्तर छायावादी कवियों ने जैसे सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेंद्र शर्मा आदि कवि प्रगतिवादी बन गए। बालकृष्ण शर्मा नवीन, शिव मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, गिरजा कुमार माथुर आदि ने भी प्रगतिवादी कविताएं लिखी। अब प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं क्या हैं? प्रगतिवादी साहित्य की सामान्य मूलभूत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, प्रगतिवाद काव्य जीवन के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। शोषण, अन्य अन्याय व अत्याचार से निर्मित समाज की कारुणिक सच्चाई के वास्तविक कारणों की स्पष्ट खोज और उनकी यथार्थवादी स्वरूप को प्रस्तुत करता है। दूसरा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विश्लेषण कर अर्थ को ही संपूर्ण विषमताओं का कारण मानकर उसके विभाजन को प्रमुखता देती है। तीसरा, समाज में असमानता, शोषण, दमन, अन्याय व अत्याचार के लिए उत्तरदायी कारणों से मुक्ति के उपाय की स्पष्ट घोषणा अर्थात समस्त संघर्ष या खूनी क्रांति का आह्वान करना। पूंजीवाद, पांचवा, पूंजीवाद, सामंतवाद आदि सभी प्रतिक्रियावादी तत्वों से संबद्ध सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा साहित्यिक रूढ़ियों का विकास कर समाजवाद की स्थापना करता है। छठा, सशस्त्र क्रांति के बाद उद्भूत सुनहले साम्यवादी समाज की रूपरेखा व उसकी विशेषताओं को उद्घाटित करना। सातवां, कला को वह अभिव्यक्ति का साधन ना मात्र मानकर उसका सहज बोधगम्य रूप अपनाने पर जोर देता है। जिससे सर्वसाधारण उसे समझ सके। साहित्य में व्यक्ति के ऊपर समाज की सत्ता का अंकुश चाहता है। उसका दृष्टिकोण पूर्णतः भौतिकवादी है। वह ईश्वर अथवा आत्मा की मान्यता नहीं देता। डॉक्टर गुलाब राय के प्रगतिवादी काव्यों का मूल तत्व निम्नलिखित है। पहला, किसानों मजदूरों के प्रति सहानुभूति तथा पूंजीपतियों और अन्य शोषक वर्ग के प्रति विद्रोह। दूसरा, रूस मास्को और लाल सेना का यशगान। तीसरा, उन्मुक्त प्रेम। चौथा, गांधीवाद के प्रति विद्रोह और मार्क्सवाद का समर्थन। पांचवा, हिंदू मुस्लिम ऐक्य भाव का विकास। प्रगतिवादी मानवतावाद के निकट एवं धर्मवाद एवं संप्रदायवाद के विपरीत एक बौद्धिक युद्ध है। जैसा कि कवि ने अपने काव्य में प्रस्तुत किया है, भ्रांत यह अतिरंजित इतिहास व्यर्थ के गौरवगान दर्पण से एक महान अर्पण मुखमलान। किसी को आर्य अनार्य, किसी को यवन, किसी को हूण यहूदी द्रविड़, किसी को शीश, किसी को चरण, मनुज को मनुज न कहना आह। प्रगतिशील साहित्य में यथार्थवाद का बड़ा ही महत्व है। समाज में दीन हीन निर्धन गरीब मजदूर मजलूमों में जीवन यथार्थ को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बंगाल के अकाल का यथार्थ चित्रण करते हुए लिखते हैं, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर हो रही है अन रीति बरबर, सारा राष्ट्र देखता है। प्रगतिशील साहित्य में जीवन में यथार्थ एवं शोषक एवं शोषितों के मध्य वैषम्यता को बड़े ही मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया है। एक ओर बालकों को दूध नहीं मिलता, दूसरी ओर शोषक वर्ग कुत्ते को दूध पिलाते हैं। एक ओर न खाने को अन्न है, न पहनने को वस्त्र है, न रहने को झोपड़ी, दूसरी ओर सक्षम वर्ग ऐश पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस प्रवृत्ति के कारण समाज में भीषण संघर्ष फैला हुआ है। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस यथार्थ शोषण का वर्णन करते हुए लिखते हैं, स्वानों को मिलता वस्त्र दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ को हड्डी से चिपक ठिठुर, जाड़ों की रात बिताते हैं, युवती की लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेली पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण। प्रगतिवादी कवि रीतिकालीन कवियों से विद्रोह कर नारी का शोषण यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किए हैं। नारी शोषण की चरम सीमा का जिस विभत्स स्वरूप को प्रगतिशील साहित्यकारों ने प्रस्तुत किया है, उसका एक उदाहरण निम्नलिखित है। जैसा पंत ने लिखा है, योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवीय प्रतिष्ठा, उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे नर पर अवसित। उपयुक्त विवेचनाओं से यह सिद्ध होता है कि प्रगतिशील काव्य एक क्रांति है। यथार्थ का सजीव चित्रण है, कमजोर एवं शोषित वर्ग का एक मजबूत संघर्ष है। यह बिंबवाद प्रतीकवाद से अधिक यथार्थवाद का प्रस्तुतिकरण है। समतावाद, समाजवाद, बिंबवाद प्रतीकवाद से अधिक यथार्थवाद का प्रस्तुतिकरण है। समतावाद, समाजवाद खूनी क्रांति के लिए एक बौद्धिक युद्ध है। प्रगतिशील साहित्य के काव्यकार समाज के शोषक समाज को मिटाने का ऐलान करते हैं। नारी उत्पीड़न एवं नारी शोषण के प्रति का नई ज्वाला गीत प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः प्रगतिशील साहित्य सक्षम वर्ग के विपरीत एक भयानक जंग है। प्रश्न यह है कि प्रयोगवादी काव्य के आधार पर नई कविता की विशेषताएं बताइए। उत्तर, प्रयोगवादी काव्य। प्रयोगवादी काव्य हिंदी काव्यकला की अति आधुनिक काव्यकला है। जैसा कि डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, प्रयोगवाद प्रमुखतः कविता का आंदोलन था, जो बाद में नई कविता के रूप में परिणित हो गया। प्रयोगवादी काव्य मूलतः प्रगतिशील काव्य की प्रतिक्रिया है। जिस प्रकार प्रगतिशील काव्य छायावाद के प्रकृतिवाद, रहस्यवाद, बिंबवाद की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यथार्थवाद का चित्रण करता है, उसी प्रकार प्रयोगवादी काव्य प्रगतिशील साहित्य की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रस्तुत हुई। प्रगतिशील साहित्य का यथार्थ मानव मन को रंजित कर दिया था। मानवीय समाज के कष्ट, दुख, पीड़ा, वेदना, दर्द, शोषण के यथार्थ चित्रण से विह्वल एवं उद्वेलित मानव मन का शीतलता से आच्छादित करने हेतु कवियों में एक नया वर्ग प्रस्तुत हुआ। जैसा कि डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने लिखा है, आधुनिक हिंदी कविता में एक नए वाद का स्वर सुनाई देने लगा और यह प्रयोगवाद है। और हिंदी कवि प्रगतिवाद के राजनीतिक बंधनों से मुक्त होने के लिए छटपटा उठे, इसलिए वह अपने ढंग से प्रयोग करना चाहता था। उसे हृदय वीड़ा झंकार जितनी बासी और बेसुरी मालूम होती, उतने ही फावड़े की खनखनाहट भी कानों को विदीर्ण करने वाली प्रतीत होने लगी है। प्रगतिशील साहित्य के प्रतिवाद के रूप में प्रस्तुत प्रयोगवादी काव्य के विकास का मूल कारणों में प्रगतिवाद का मूलभूत कमियां सर्वाधिक कारगर सिद्ध हुई। एकती प्रगतिवाद की मूल सैद्धांतिक न्यूनता ही यह है कि वह आध्यात्मिकता का पूर्ण तिरस्कार करता है। दूसरे, जैसा कि मार्क्स ने कहा था, कोई भी व्यवस्था या पद्धति अंतिम नहीं, एक के बाद एक अच्छी व्यवस्था पद्धति का विकास होता रहता है। अतः यह बात साम्यवादी व्यवस्था पर भी लागू होती है। तीसरी, जो लक्ष्य मार्क्सवाद विचारकों का है, समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना, उसी लक्ष्य की ओर कांग्रेस सरकार भी धीरे धीरे बढ़ रही है अतः भारत में मार्क्सवाद का प्रभाव न्यून हो जाना स्वाभाविक था। चौथी, हमारे कवि एवं साहित्यकार प्रगतिवादी विचारधारा को पूरी तरह पहचान नहीं पाए, वह उसे अपनी वृद्धि का ही विषय बना सके, हृदय की वस्तु नहीं बना सके। पांचवी, हिंदी के अनेक प्रगतिवादी कलाकारों को कुछ ऐसा भ्रम हो गया कि वे नग्न चित्रण को ही सच्चा मार्क्सवाद समझने लग गए। छठी, प्रगतिवादी आलोचकों के पारस्परिक मतभेद बढ़ जाने से भी इस क्षेत्र के लेखकों को पर्याप्त उत्साह नहीं मिला। शैली एवं भाषा की दृष्टि से प्रगतिवादी काव्य का स्तर बहुत नीचे गिर गया। उपयुक्त विचारों का अध्ययन करने से सिद्ध होता है कि प्रयोगवादी काव्य कला का उद्भव अनायास ही नहीं हो गया, अपितु प्रगतिशील साहित्यों की कमियों एवं रूखेपन का परिणाम ही प्रयोगवादी काव्य है। प्रयोगवाद का उद्भव एवं विकास मूलतः कवित्व जगत में सन 1943 से 1953 के बीच हुआ। यही काव्य कला कालांतर में नई कविता का मुख्य आधार बना। प्रयोगवाद कविता की विशेषताएं क्या हैं, इस पर एक टिप्पणी। प्रयोगवादी काव्य मूलतः विज्ञानवाद पर आधारित है। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के लिए प्रयोग अति आवश्यक संसाधन है। वस्तुतः प्रयोग शब्द अंग्रेजी के एक्सपेरिमेंट के अनुरूप ही हिंदी में प्रचलित काव्य कलाकार मानव के शरीर और मस्तिष्क तत्व का विश्लेषण करता है और उसे कविता में उतारता है। नवीन प्रयोगों के पक्षपाती प्रयोगशील कवि विभिन्न प्रकार से प्रयोग करके कविता का मार्ग निश्चित करते हैं। प्रयोगवादी काव्य कला की विशिष्टता को दीर्घदर्शित करते हुए श्री सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा था, प्रयोगवादी काव्य जहाँ अपनी शैली तथा रूप विधान में अति वैयक्तिक हो जाता है, वहाँ अपनी भावना में जनवादी व छायावादी सपनों के कोहरे को हटाकर एक नवीन वास्तविकता के सुख को पहचानना चाहता है और सूक्ष्म भाव जगत से हटकर फिर वास्तविकता के भूमि पर उतरना चाहता है। पर उस भूमि में भूकंप है, उसकी वास्तविकता बदल रही है। यह नवीन काव्य प्रभाववादी भी है। वह नित्य नवीन प्रभावों की छायावादियों में चलता हुआ दिखाई देता है। श्री शिवमंगल सिंह सुमन ने पंत के पल्लव से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना है। प्रयोगवादी काव्य कला विज्ञानवाद के पश्चात यथार्थवाद को सर्वोच्च प्रदान करता है। छायावाद के पलायनवाद के स्थान पर यथार्थवाद के महत्ता को स्वीकार किया गया है। सन 1947 के स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर यथार्थवाद पर बल दिया जाने लगा। देश के छोटे से छोटे समस्या एवं आम नागरिक एवं वर्गों के भावनाओं को बड़े ही मार्मिक एवं सजीवता के साथ सजोया गया है। प्रयोगवादी कविता में यथार्थवाद की भी भावना है और कहीं कहीं तो अति नग्न यथार्थवाद के दर्शन होते हैं। जैसे, मेरे मन की अंधियारी कोठरी में अतृप्त आकांक्षाओं की वेश्या बुरी तरह खांस रही है। इसमें प्रयोगवादी काव्य कला में भारतीय दर्शन को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानव समाज के मध्य अनास्था की भावना दिनों दिन बढ़ रही है। आम मानव जीवन में निराशावाद की भावना व्याप्त होती जा रही है। हर तरफ हतोत्साहपन व्याप्त है। उदाहरण के लिए, आखिर कब तक लड़ने वाले मुट्ठी जेबों में बंद, नया दौर लाने में असफल छंद, कब तक, आखिर कब तक। प्रयोगवादी काव्य नारी स्वतंत्र आंदोलन में बड़े ही व्यापक रूप से योगदान कर रही हैं। नारी मुक्ति आंदोलन के
सिस्टम बंद हो जा रहा है। चल तो रहा है,
फिर दबाने चला है ना,
टाइम भी बढ़ रहा है,
देख रहा हूँ ना,
चलते रहो, करते रहो।
अच्छा एक मिनट, मेरा थोड़ा सुन लीजिए, इसको थोड़ा बैठ के, एक बार हम सुने थे ना, तो इसको हटाना पड़ता है ना।